जी, आप लोगों में से कोई शेयर कुछ करना चाहेगा तो रेज हैंड करें, और जो लोग लिखना चाहें टेक्स्ट खोल दें। चंद मिनट का हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला शुरू होगा। जी, इधर से कोई यहाँ वालों में से प्लीज जस्ट रिवाइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, ये आप लोग रिवाइज करेंगे। अब इधर डिस्कशन में लिखिए, आप लोगों ने जो सुना है उसको लिखिए। जी, इधर से कोई बात कहना चाहे। जी रफत, आप कुछ कहना चाहेंगी? आ जाए इधर माइक पे, दूसरे भी सुने। हैं, जी ये रफत है, ये कुछ कहेंगे आपसे।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिफत खान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे क्लास ले रही हूँ लाइव जो होती है। मैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ के हर जुमेरात को जब हम पढ़ते हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें दुनिया की हर उस पे बता दिया हमें कि हमें हर उसमें मोड़ पे क्या करना है, किस तरह करना है, और एक एक किस्म का हमें हमें टूल्स दे दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के, चाहे वो दीन की खिदमत करने के लिए हो, चाहे ज़िंदगी गुजारने के लिए हो, चाहे एक माँ की हैसियत से हो, चाहे एक बाप की हैसियत से हो, कोई भी ज़िंदगी का मोड़ हो, हमें किस तरह हर उस पे रिएक्ट करना है, हर सिचुएशन पे और हर मौके महल के मुताबिक हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और उसके फ़ैसले करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन स्पेशली जब ये अब किताब पढ़ने लगे हैं तो एक सामने खाका आ जाता है कि अच्छा हमें इस तरह करना है, इससे इस चीज़ से ज़्यादा एक्सीड अपने आप को नहीं करना और इससे कम भी नहीं करना। एक स्टैंडर्ड आपको मिल जाता है कि जो आपने जिसके मुताबिक आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी जज़ाकअल्लाह खैर, वासन जज़ा। जी आप माइक के साथ बोल रही थी ना, आवाज़ आ रही थी इनकी इधर? ठीक है, हाँ जी, जज़ाकअल्लाह खैर आपने जो कहा, और हकीकत है कि जब सुनते हैं तो उसका अमल पे असर तो आना ही चाहिए। आई हैव गॉट द स्पिरिट टू वर्क फॉर अल्लाह मोर देन एवर एंड जस्ट फॉर अल्लाह सुबहान तआला। आई फील अल्लाह सुबहान तआला इज़ ट्रेनिंग मी एंड एवरी एवरी वन ऑफ अस नाउ इट्स ओन टर्न टू डू आवर ड्यूटी इंशाल्लाह। सही कहा आयशा आपने कि अल्लाह ताला हम सबको मौके दे रहे हैं कि हम इस रास्ते में काम करें और कुछ करें। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर दिन एक नया चांस है, एक नया मौका है, कर लो जो करना है। कल नहीं होगी, कितने ही लोग हैं जो कल थे आज नहीं रहे, तो कल हमने कहाँ रहना है? तो अगर कुछ कर जाएंगे, अपना हिस्सा डाल देंगे तो कोई खैर हमारी तरफ से फूट गई तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा ना। आज ज़िंदगी का मकसद मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताज़ा, वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। वी डिस्कस विद किड्स, दे आल्सो लर्न लॉट्स ऑफ टिप्स ऑफ वे ऑफ लिव लाइफ। अल्लाह सुब्हान तआला शो अस स्ट्रेट पाथ, आमीन। आई थिंक विद टीचिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लर्न अ लॉट, स्पेशली अबाउट द तबलीग थिंग दैट आई लर्न हाउ वी हैव टू वी शुड डू अल्हम्दुलिल्लाह एंड कीप सबर एंड गुड वर्ड्स। सही, बिल्कुल सही। आप देखिए कि यही चीज़ है जो इंसान को फिर और से और काम करने के लिए काबिल करती है। जी आप मुंतहा 101 आप माइक ले सकती हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी कमेंट्स शेयर करेंगे दूसरों के साथ।
बात में बहुत तकलीफ हो रही है कि ये खजाना हमसे इतने दिन बाद हमें मिल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको इससे भरपूर फायदा अता करे और बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। पहले हमें, जैसे पहले तबलीग करनी है तो हम एक साथ जहाँ लोग नजर आते थे हम पकड़ के कुछ बताते थे, ना हिकमत के साथ ना तरीके से। अब हमने जैसे बात की है कि तबलीग के मोटिव्स जो हैं, अल्लाह ताला की रजामंदी, लोगों के लिए दर्द, जो सबसे बड़ा मोटिव है वो हमें पैदा करना है। हमें सिर्फ तबलीग अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए करेंगे तो ना हमें फायदा होगा ना उन्हें फायदा होगा, बल्कि ये सोचेंगे कि नाउज़ु बिल्लाह अगर हमने उनको नहीं बताया, उन्होंने नहीं समझा तो उनका नुकसान होगा। तो इससे उन्हें भी बहुत फायदा होगा और हमारे कलाम में भी बहुत फायदा होगा। ये मैंने इस चीज़ को बहुत महसूस किया कि ये नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे करके अपनी जिम्मेदारी ख़त्म करनी है। और दूसरी अल्लाह की रज़ा के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छी अच्छा मोटिव लगा। तो मुझे बस ये शेयर करना था कि हम अक्सर कोई चीज़ सुन के, अहकाम सुन के, बस खासतौर पर मैं जो है बगैर सोचे समझे बस कर लेती हूँ कि कर लूँ। तो अब मुझे पता चला कि इंशाल्लाह ताला हिकमत से, और ये सारे यहाँ पे जो लिस्ट करके नंबर्स में माशाल्लाह इन ऑथर ने लिख दिए हैं मोटिव्स और सारे, और रसूल सल्लम की उसवा और उनके तरीके को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत बहुत मदद होगी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सब के लिए बहुत आसानी करे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी जजाक अल्लाह खैर। जजाक लिखते हैं कि पहले मैं सोचती थी कि कैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे और घर वालों से ज़्यादा अजीज़ हो सकते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई रियलाइज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि आप देखिए कि हम जब ये हदीसें सुनते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से और अपने माल से ज़्यादा अजीज़ हों, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा पता नहीं ये कैसे होता है, लेकिन हकीकत है कि जब आप की ज़िंदगी पे गौर करते हैं और उसको देखते हैं तो फिर पता चलता है। ये है असल मोहब्बत के इजहार, जो सारी ज़िंदगी टाए वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद। ये नहीं कि साल में एक बार हम उनका नाम ले लें और बाद में हम भूल ही जाएं कि वो कहें। एक मुझे तो ये किताब पढ़ते हुए ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लम का किरदार आंखों से देख सकते हैं, हम चलते फिरते दिखते हैं, कभी शौहर होने के नाते, कभी बच्चे होने के नाते, कभी यानी एक मुबल्लिग होने के नाते, और बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो यही मैं समझती हूँ कि असल हक भी है मोहब्बत करने का। यस बोथ फीलिंग्स आई टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू सेव अदर्स फ्रॉम फायर विद अल्लाह सुब्हान तआला हेल्प एंड ऑर्डर। आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए मदद करे और आसानी करे। जी आप माइक पे आइए इरम, और उसके बाद फिर सिद्रा 81, आप दोनों बारी बारी माइक ले सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ये खैर क्लास हम लोगों ने ज्वाइन की है, बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस किताब से बहुत कुछ सीखा है कि पहले लोगों में जब दीन की बात कहने आते थे तो सही बात, जैसे पहले सिस्टर ने कहा कि हमें कहने का तरीका ही नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा समझ में आती है बात कि लोगों को अल्लाह के पास लेके आना है। कि कभी बाजार का तो कभी बाहर भी जाओ तो मुझे इतने सारे लोग जब नज़र आ रहे होते हैं जो कि हमारे दीन पे नहीं है, तो उनके लिए एक फ़िक्र दिल में आती है, और बाकायदा मैं ऐसा महसूस कर रही होती हूँ उस चीज़ को कि कयामत का आलम है, और जो आज ये चेहरे हंसते हुए हैं और मुस्कुराते हुए, क्या वो चेहरे वहाँ पर इस तरह से हो सकेंगे? तो उनके लिए एक तड़प दिल में आती है। अपने बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं जिनको अगर नमाज़ के लिए बुलाओ और अगर वो नहीं आ पाते तो उनको उस वक्त मैं फील करती हूँ कि उनके इर्द गिर्द एक आग सी लगी हुई है, और तड़प आती है, दिल से तड़प निकलती है कि अल्लाह इन सबको, हम सबको सीधा रास्ता दिखा दे। आमीन। और इसके अलावा ये कि अब वाकई समझ में आया कि किस तरह से अल्लाह को दीन, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना है, कि उनको प्यार से, और अगर कोई नहीं आता है तो उनको और उनके लिए तड़प करनी है, कि जैसे एक मैं समझती हूँ कि एक शिकार कैसे अपने शिकारी को देखता है, उसी तरह से हम के लिए देखना है कि वो अगर नहीं दीन की तरफ आ रहे हैं तो उनकी तरफ, तो ये नहीं कि हमें उनसे मुंह मोड़ लेना है कि अब ये नहीं हमारी बात सुन रहे हैं, तो जैसे एक नॉर्मली हमारी अना हमारे बीच में आ जाती, नहीं, उनके लिए तो और तड़प महसूस करके उनके और इखलाक से, प्यार से, जो हमारे नबी सल्लम का तरीका हुआ करता था, जैसे अभी माशाल्लाह उस्ताद ने हमें पॉइंट्स जो लिखवाए इसमें भी वो पॉइंट्स आते हैं, तो उसी तरीके से इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए तड़प महसूस करनी है, लोगों को अपने दीन की तरफ लेके आना है इंशाल्लाह। अपने हमारे बहुत सारे सिस्टर्स हैं जो कुरान की तरफ उनको लेके आना है, तो किस हिकमत से लेके आना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस्ताजा से बहुत सा बस उस पर अमल करने वाला बना दे कि उस तरीके से हम लोगों को दीन की तरफ लेके आ सके। उस्ताजा की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है हम सबको। आमीन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपसे एक सवाल करना था कि इस्लाम में यह है कि किसी दिन किसी से 3 दिन से ज़्यादा बातचीत बंद हो तो मतलब गलत है, तो हम जितना भी चाहें अगर उसके हम बात करें और लेकिन दूसरा बिल्कुल सुलह ना करना चाहे और इस्लाम की कोई बात सुनने को तैयार भी ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब उसमें अगर मतलब हम तो गुनहगार नहीं होंगे क्योंकि हम या होंगे हम भी क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि मतलब सुलह रहे घर में, मतलब सुकून रहे, उसके लिए बातचीत रहे अच्छे से और दूसरा भी इस्लाम की तरफ रागिब हो, में हमें हमारा क्या फर्ज है कि हमें क्या करना चाहिए?
जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी आवाज़ आ रही है? तबलीग के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, जो कि मतलब बस उस्ताजा ही जरिया बनी है कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कुरान का इलम हमें दिया कि हमें अच्छे अमल की तौफीक भी दी। तो जब मैंने मतलब रमज़ान में दौरे कुरान मुकम्मल किया तो उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गई थी पाकिस्तान और नियत यही था कि मतलब कुछ ना कुछ करूँगी तबलीग के सिलसिले में और वो भी सिर्फ यानी अल्लाह ही के लिए करूँगी। मतलब अब जिस तरह हमने पढ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही था कि उन्होंने अल्लाह ही वो सिर्फ करते थे, तो मैं जब गई थी तो यही सोचा था, तो फिर यानी जहन में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह यानी मेरे अबू का एक स्कूल है हमारे गाँव में, तो मैंने फिर वहाँ पर एक शार्ट कोर्स कराया 1 हफ्ते का बच्चों को, तो उसकी वजह से फिर मतलब जब 1 हफ्ते में मतलब छोटा सा मैंने किया और मैं पूरे स्कूल में क्लास लेती थी कुरान का, तो उसकी वजह से बच्चों में शुरू से मैंने नमाज से किया और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं कहूंगी कि ये अल्लाह ही का फजल था कि बहुत से बच्चे फिर यानी उन्होंने उन सब उन्होंने मतलब नमाज उनकी सही हो गई बल्कि शुरू कर दी और मुझे पेरेंट्स के मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई। उसके बाद फिर मैंने लास्ट दिन पर जो था फिर मैंने मतलब कुछ फ्लायर वगैरह इस तरह बनाए और सब सारे गांव में मैंने बच्चों के ज़रिए बांट दिए कि अब मैंने 1 हफ्ते के लिए माओ का वो करना है, तो उसके बाद फिर मैंने और मैं बता नहीं सकती अल्लाह ने हेल्प की मेरी कि मतलब जो मेरे वहाँ पर कज़न्स वगैरह थे उन्होंने खुद, मैंने इतना वो नहीं कि सिर्फ वो पढ़ कर फिर उन्होंने खुद मस्जिद वगैरह में ऐलान कराए। फिर उसके बाद जो मैंने औरतों का किया 1 हफ्ते का, तो उसमें औरतों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब जो कुछ मैंने सीखा था मैंने कोशिश की कि मैं उसको मतलब उनको दे दूँ और आपको मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस तरह फिर आखिर में सही एक शरई अदालत आप कह सकते हैं कि इस तरह हुआ था, ये भी अल्लाह का फजल है कि मतलब उन मैं कहती हूँ कि गांव के लोग जो है ना कि वही बात कि उनका नेचर से ज्यादा करीब होते हैं तो वो अल्लाह की कुरान को बहुत दिल से समझते हैं और इनके सवालात और समझने के अंदाज इस तरह थे कि मतलब मुझे बहुत खुशी होती थी और बस अल्लाह ही का फजल था कि बहुत से मसले इस तरह है इस तरह थे जो कि उन्होंने मतलब सुने और फिर मतलब मैं कहूँगी जिस घर में हुआ है उन घर के फिर जो मसले हल हुए हैं, तो बस ये अल्लाह ही का फजल था और उस्ताजा ही जरिया बनी है। और इस तरह और मतलब मैंने अपने माँ अम्मी के घर भी एक छोटा सा कोर्स अरेंज किया और उसका भी फिर बहुत फ़ायदा हुआ, तो ये बस अल्लाह उस्ताजा को उसका जजा दे जो हमें इतनी हेल्प की। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलें फिर पहले मैं बात कर लेती हूँ। जी जज़ाकअल्लाह खैर, आप लोगों ने जो भी शेयरिंग की और पहले
पहले जो सवाल जिन जिन स्टूडेंट का सवाल था कि जब हम किसी को बुरी बात पे रोकते हैं या सवाल करें तो उस पर कोई नाराज़ हो जाए तो क्या करें, तो अब देखिए कि इस सारी चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला ये कि जितना आप आगे सीखते जाएंगे आपको खुद ही हिकमतें आएंगी। लेकिन अगर कोई आपसे इस बात पे नाराज़ होता है कि आप ये बात क्यों करते हैं, तो फिर उसके बाद ना करें, उस तरीके से ना करें, अपने अंदाज को चेक करें कि कहीं मेरे कहने सुनने में तो कोई कमी नहीं, या मैंने ऐसे मौके पे बात तो नहीं कर दी जब अगला डिफेंसिव हो गया या हर्ट हो गया। जितने अच्छे तरीके से आप बात कर सकें उतनी करें, और जहां फील हो कि अभी बात करने से फायदा नहीं होता तो वहां अमल से बात दिखा दें, अपना अमल रखें, ठीक है। और दूसरा, जो आपका नाम लिखिएगा स्क्रीन पे, मुझे आपकी बात से आपकी ईमेल भी याद आ गई, ये मेरा ख्याल है कि या यूके से हैं और या नॉर्वे से हैं आप, तो माशाल्लाह इन्होंने जी वहीदा हैं आप जी, जज़ाकअल्लाह। वहीदा आप यूके में हैं या फिर नॉर्वे में? नॉर्वे में है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिन्होंने अभी बात की है नॉर्वे में, और अब देखिए कि सिर्फ एक इन्होंने दौरे कुरान किया था और अपने गांव में जाके किया, पूरी इनकी ईमेल आई थी और मुझे इतनी उससे खुशी भी हुई थी, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ भी इनके लिए की कि देखें कि नबी सल्लम का दौर याद आ गया ना, कि जो सहाबा इकराम में से कोई एक यानी किसी दूर जगह से आते थे, मुसलमान हो जाते थे और जाके फौरन अपने कबीले वालों को कहते थे, यानी अबू ज़र ग़फ़ारी थे एक, तो उन्होंने जब आके बात सुनी तो फौरन जाके अपने कबीले वाले को कहा, और कितने ही लोग मुसलमान हो गए, बस लोगों ने बस सुना और जाके कहा और पूरे गांव उनके मुसलमान हो गए। तो मैंने इस चीज़ से यही सीखा कि हम कभी पीछे ना हटें, और छोटी छोटी कोशिशें जो होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बहुत बड़े काम ही करे तो वो काम है, बाज़ दफ़ा छोटे छोटे कामों की भी बड़ी अहमियत होती है, तो कभी गिव अप ना किया करें, अपना हिस्सा डाल दें। हम ये सोचेंगे ना हज़ारों जमा हो जाए मेरे पास या मुझे तो लोग चाहिए, नहीं, इखलास के साथ आप एक बंदे को सिखाना शुरू कर दें, कोई नहीं आया आप खाली कुर्सियों को सुनाना शुरू कर दें, आप देखिए कि थोड़ी देर में आपका कमरा भर जाएगा। तो बिल्कुल आप सबको यानी इसी चीज़ से ही अल्लाह ताला भरी रखे, और आप लोग जो सुने सीखे उससे उसको दूसरों तक फैलाएं। बचपन की एक वो दुआ मुझे बड़ी याद आती है ना, कि लब पे आती है दुआ मेरी बन के तमन्ना मेरी, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जरा सोचिए किस बेहंगम तरीके से हमें ये दुआ सिखाते हैं, मुझे तो नहीं पता था इसका मतलब। बच्चों की सुबह जो रिसेस होती है उसमें होती क्या होती है, असेंबली में, मुझे नहीं पता था कि हम क्यों पढ़ते, किसी ने एक लम्हे के लिए वहाँ माइक पे आके ये नहीं कहा था कि इसका ये मतलब है कि तुमने इस्लाम सीखना है, इस्लाम के अच्छे मुसलमान प्रैक्टिकल बन के दूसरों में ये नूर आम करना है। बस ये पता था लामा इकबाल की नज़म है और इसको पढ़ना है, लेकिन जब कुरान हाथ में आया तो इसका मतलब समझ आया। जी उसमें आप माइक ले सकती हैं, अगर आप रूम में हैं तो स्क्रीन पर वन टाइप करें ताकि मैं माइक छोड़ दूँ, सम टाइम यानी माइक स्टक हुआ था, ठीक है जी आप माइक ले सकती हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जज़ाकअल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बातें सुनने को मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जिस तरह मोहतरमा ने अभी हमसे शेयर किया, तो मैं भी आपको से थोड़ा सी शेयर करना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों हमारी दोस्त थी, उनके हस्बैंड की बर्सी थी, और ये दोस्त हमारी बहुत ही पुरानी और दिल की भी बहुत अच्छी और अखलाक की भी बहुत अच्छी है ना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उनके घर कुरान खानी थी, तो अब हम लोग मतलब मी पे जाती तो नहीं हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब हक सामने आया तो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से कहा कि उसमें आप आके थोड़ा सा हमें थोड़ा कुछ बताओ, थोड़ा कुछ स्पीच दे दो, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल मैं गई और मैंने अल्लाह ताला से दुआ करती हुई कही कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप ही सब जानते हैं, और आप ही मेरी ज़ुबान पर ऐसी बात डालिएगा कि मैं हक लोगों को सही तरह पहुँचा सकूँ। तो वहाँ पर जब मैं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वॉइस लो, चले बहरहाल आप सुन लीजिए सफर करके। तो बहरहाल जब मैं वहाँ पहुंची तो माशाल्लाह सौ से ऊपर औरतें थी वहाँ पे, और मैं तो माशाल्लाह यू नो घबरा गई वहाँ से, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरू की बात, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने बड़े आराम से, और but we can still hear it. Now, okay now. अच्छा चलिए आप सुन लीजिए प्लीज क्योंकि मैं आपको और तो कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो बहरहाल मैंने जब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह तो वही साथ साथ वाली बात है कि बताने का अल्हम्दुलिल्लाह तरीका होना चाहिए हम लोग को अंदाज जिस तरह आप लोगों से हम लोग सीख रहे हैं तो हमारा अंदाज भी उसी तरह प्यार मोहब्बत और राइट हम लोग स्ट्रेट अटैक मत करें कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं ये चीज़ तो बिदअत है ये चीज़ गलत है और मतलब ये फिर लोग ना फिर बड़े मतलब सुनना भी चाहें तो नहीं सुनते हैं. लेकिन मैंने उन्हें बड़ी हिकमत से मतलब बात की कि भाई आप लोग मतलब मैं जब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कुरान का तो मैं भी अंधाधुंध तकलीद करती थी और लेकिन जब तक जब हक मेरे सामने आया है मैंने तहकीक करना शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर अबू हुरैरा की भी एक कहते हैं ना रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शक्ल सूरत और मालों की मकदार को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और अमाल के खलूस को देखता है. तो हमारे मेरे दिल में बस यही था और इतने खलूस लेकर मैं गई थी कि अल्लाह पर मेरी जुबान से खैर ही निकले और लोगों के दिल में तो खैर ही डाल देना. तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया क्वेश्चन किए और मैंने बस कुरान और सुन्नत के हवाले से उनको जवाब भी दिए और खैर ही लेकर उठे और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई. मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया और काफ़ी पुरानी दोस्ती थी उल्टा मुझे कह रही थी भाई तुम्हें क्या हो गया. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उनको क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी बताया काफ़ी लोगों ने नंबर्स लिए फिर उनको मतलब तफसीर मतलब ये जो हमारी होती हैं हदीसें हैं सही मुस्लिम सही बुखारी मैंने उनसे कहा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें आपके घर में ही हैं सारे हज़ार किस्म के जो भी क्वेश्चंस आपके दिल में आपको घर में ही जवाब मिल जाएंगे. आप ऑनलाइन क्लासेस जो कुरान की होती हैं वो सुनिए आप हदीसें पढ़िए ऑथेंटिक जितनी भी हदीसें हैं तो आपका दिल और जहन खुलता चला जाएगा. तो बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुकना इज्तिनाबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तिनाबा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बुल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैर.
जी जज़ाकल्लाह खैर वासन जज़ाब सबकी शेयरिंग का. और असल बात वही है कि छोटी सी कोशिश हो तो बस इतनी काफ़ी है. मुझे वो याद आ जाती है बात जो मैंने अलविदाया और नहाया में पढ़ी थी कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग चलाई जा रही थी तो उस आग के नतीजे में लोगों ने तरह के ईंधन डाले और लोग एक नेकी समझ के आपके ख़िलाफ़ ईंधन जमा करते थे कि किसी को मन्नत माननी होती थी तो वो इस तरह मन्नत मानती थी औरतें कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इब्राहिम के लिए जो आग जलाई जा रही है उसमें हिस्सा डालूंगी. ये वक्त था लेकिन उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया ही थी कि जिसने एक चोंच भर के पानी तो वो उस आग को बुझाने की कोशिश की तो किसी ने उसे कहा कि ये तुम इससे क्या होगा इतनी इतनी बड़ी आग एक चोंच के पानी एक कतरे से कैसे मिटेगी. तो उसने यही कहा कि मैं क्या करूं मेरी चोंच इतनी है मुझसे तो अल्लाह ताला यही पूछेगा ना तुम क्या कर सकती थी और तुमने क्या किया. इमाम इब्ने कसीर की किताब अलबिदाय है तो उसमें मैंने ये खुद वाक्य पढ़ा था. तो हकीकत ये है कि क्यामत के दिन तो अपनी चोंचें दिखा देंगे कि अल्लाह ये था कर ही सके ये तो कुछ भी नहीं है तो आटे में नमक डालने वाली चीज़ें लेकिन क्या करें था ही इतना तूने उम्र इतनी दी तूने सलाहियत इतने दी तूने मौके इतने दिए क्या करें. लेकिन अगर मौके भी ज़ाया कर दिए ये भी ज़ाया कर दिए फिर मुश्किल होगी. तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए तड़प होनी चाहिए इखलास होना चाहिए और फिर अल्लाह की बात आगे रखेंगे तो बेहतर होगा. क्योंकि आप देखिए कि घरों में ऊपर में एक सवाल किसी का देख रही थी मैं चाह रही थी कि उसका जवाब दे दूँ कि किस तरीके से इंसान अपने घरों में भी इन चीज़ों को लाए. Taza, please tell us how to wake up the curiosity among non-Muslims. For example, my parents, they are very rigid. Dua kare. Pehli cheez hai dua kare. Dua jo na ye band dilon ko khol deti hai. किसी के लिए भी एक्सेप्टेंस की दुआ करें. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं मुसलमान हो चुके थे लेकिन उनकी माँ जो थी वो भी इस्लाम पे नहीं थी और इतनी ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी कि कसम तक खा ली उन्होंने कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी जब तक कि तुम दीन नहीं छोड़ते. इसी तरह के कई वाक़यात हैं तो उनमें से एक वाक़यात है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह बड़े दुखी रहते थे कि अल्लाह ताला मैं मेरी माँ क्यों नहीं इस्लाम पर आती. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी तो जब ये गए ماں دروازہ بھی نہیں کھولا کرتی تھی تو دیکھا تو شاور لینے کی آواز آ رہی ہے، ماں غسل کر رہی تھی، ویٹ کیا جب باہر نکلی تو ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے. تو اس لیے جہاں کچھ نہ کر سکیں دعا، مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے جب میں کچھ نہ کر سکوں، میں کہتی ہوں اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے سارے تو نے کرنے ہیں. ہینڈز اپ، بیٹھ جائیں، ہمت ہار دیں اس راتے میں کہ بس میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جواب کر دیں. پھر جو اللہ کرے گا وہ تو وہ ہوگا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں. آئی ہیو اے ینگ گرل اباؤٹ 12 to 13 ایئرس ایج who comes over to learn tajweed at my house, and after we finish reading tajweed then I take out my notes from class and tell some tafseel, and she really enjoys it and learning a lot. Jazakallah. MashaAllah, دیکھیں کتنی اچھی کوشش ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آپ کی اس کوشش سے بھی کہ آپ دیکھیے کہ بچے پڑھنے تو آتی ہیں نا. آپ لوگوں سم ٹائم خود اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں رہنے والوں میں میجورٹی جو ہے وہ مسجدوں میں والنٹیئر کرتی ہے، جو بس شام کو چلے گئے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے سچی بات ہے کہ جو اسکول بھی اسلامک بنے ہوئے ہیں وہ بھی والنٹیئرس پہ چلتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پہ ناظرہ پڑھنے کا تو سب کو ہوتا ہے. بیسٹ چانس ہے، آپ اگر کہیں بھی پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں، آپ اس کے لیے روز ایک حدیث کو نوٹ کر کے جایا کریں. سوچیں بچوں کو سبق پڑھا دیا، ناظرہ سکھا، اور اس کے بعد پھر وہ سکھا دیں. تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے، اور اللہ چاہے تو یہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے جب وقت آئے گا. تو بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے، اس طرح سبھی کو کرنا چاہیے تاکہ اپنی ان چیزوں کا اور ان صلاحیتوں کا بہترین فائدہ اٹھا سکے. One of our student is the one who brought 5 of us to listen this, mashallah, and she is teaching to our teenager class so nicely, mashallah, and it's effective because she is following the whole thing practically, mashallah, alhamdulillah. دیکھیں اب یہ کہہ رہی ہیں سدرا ون، اچھی بات ہے تو میں نام لے لیتی ہوں، کیونکہ پہلے میں نے سمجھا شاید عموماً لوگ کبھی کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں تو میں نے نام نہیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ سدرا 198 جو یہ 5 لوگوں کو لے کے آئی ہیں اس کورس کو سننے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ آپ تو یہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ وہ 5 کو لائی ہیں، لیکن فائدہ انہوں نے اپنا ہی کیا ہے. اور وہ یہ کہ وہ اگر یہاں اگر ہمارے ساتھ 3 گھنٹے اسپینڈ کرتی تھیں تو اب وہ 15 گھنٹے اسپینڈ کر رہی ہیں. ان کے نام اعمال میں انشاءاللہ 15 آورز جا رہے ہیں 5 کے ملٹیپل سے. آپ ایک حدیث سنتے ہیں تو وہ 5 سنتی ہیں، الحمدللہ. یہ تو جس نے جتنا نفع کا سودا کرنا ہے، اس کی قدر تو کل قیامت کے دن آئے گی. یہ دنیا میں کسی کے کہنے سننے سے بات سمجھ بھی نہیں آتی. My child always want to be leader in everything, and I always tell her, you shall be a leader in leading people, in spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. Ameen. یہی تو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. میں جب امام کعبہ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ان کی ماں نے کتنی محبت سے یہ دعا مانگی ہوگی، کتنا کہ اللہ میرا بچہ متقیوں کا امام بن جائے. کیونکہ وہاں جا کے تو واقعی انسان تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوتا ہے. جی شگفتہ، آپ مائک لے سکتی ہیں پلیز، باقی لوگ بھی لکھتے رہیں تاکہ بیچ بیچ میں پھر ہم اس کو بھی شیئر کریں گے.
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی تو بس یہ کہ الحمدللہ جیسے باتھ روم میں جاتے وقت صبح صبح جو ہے بچوں کو اٹھایا، کہہ دیا کہ بھئی آج جلدی سے اٹھنے کی دعا پڑھ لو، یہ سنت طریقہ ہے. باتھ روم میں جاتے وقت کہہ دیا کہ بھئی دعا پڑھ لو، سنت طریقہ ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت، بس میں بیٹھاتے وقت سبحان اللہ پڑھ لو، سنت طریقہ ہے. تو بچوں کی بھی عادت ہو گئی ہے، تو الحمدللہ یہ کلاس لینے کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ورنہ پہلے یہ چیزیں ہمیں معلوم تھی لیکن نہ ہم اپلائی کرتے تھے نہ بچوں پر اپلائی کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جب محفل میں جاتے ہیں تو پہلے میرا لوگوں کو جو اس کلاس کے بارے میں بتانے کا طریقہ تھا وہ غلط تھا، لیکن اب میں کیا کہتی ہوں وہی استاد اپنے فتبا جی سے سیکھا ہے کہ پوچھو لوگوں کے اندر جا کر پوچھو کہ بھئی آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ گھر کے کام، بچے، کھانا پکانا. میں کہتی ہوں کہ اچھا یہ کام تو میں بھی کرتی ہوں لیکن میں ساتھ میں بہت اچھی ایک اور بھی چیز کر رہی ہوں. اچھا وہ کیا؟ تو پھر کہنا شروع کرتی ہوں کہ بھئی دیکھو کمپیوٹر تو گھر میں ہوتا ہے، آپ کھول لیجئے، یہ ویب سائٹ ہے، اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہو رہا ہے یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے، آپ مجھے کال کیجئے، میں آپ کو یو نو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہوں گی، آپ وہ کر لیجئے اور کر سکتے ہیں. اور بہت اچھا ہے، اس کلاس نے میری زندگی چینج کر دی ہے، اور اتنی میں مطلب دل سے جو ہے نا تعریف کرتی ہوں. اور الحمدللہ لوگوں نے کال بھی کیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے ان کو بتایا بھی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کسی کو انوالو کریں. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
جی آپ لوگ مائک نہیں لے رہے تو پھر مجھے ہی لینا پڑتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا، آپ کی یہ بات صحیح تھی کہ آپ کو خود طریقہ نہیں معلوم تھا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. بعض دفعہ ہم شوہروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو سنتے ہی نہیں، اور خدا نخواستہ اب یہ ایسے ہو گیا، اب آگے سے غصہ بھی کرتے ہیں. نہیں، ہم اپنے طریقوں پہ بھی غور کریں نا، ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارا کیا معاملہ ہے. تو اس چیز میں واقعی جتنا زیادہ اپنے آپ کو ہم پرکھیں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے مقام پہ لے آئیں گے، تو اب خود دیکھیں گے کہ فائدہ ہوگا. یہ ساری چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، کوئی اس کے لیے الگ سے بولنا نہیں پڑتا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں آنے لگتی ہیں. یا ایک کسی کا کمنٹ پڑھتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ ریڈی رہیے. میرا خیال آپ قرۃ العین ہیں یا خود گروپ سے، تو اس کے بعد آپ پڑھیں. یہ کسی کا ایک کمنٹ اچھا لگا کہ دا پرابلم وتھ می از دیٹ آئی ایم جلد باز، وین آئی فائنڈ پیپل ولنگ ٹو لسن آئی فیل لائک ٹیلنگ دیم ایوری تھنگ سو دے کوڈ بینیفٹ، سو ان کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو مجھے یہ بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے خود کو ڈسکور کرنا شروع کیا. یہ بہت بڑی قرآن پاک کے سیکھنے کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان خود کو ڈسکور کرتا ہے. سچی بات ہے کہ اگر آپ جلد باز ہوں گے نا تو اگلا بھی نکل دے گا. مائیں جب بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو کتنی کانشیس ہو جاتی ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ پہلا بھی نکال دیتے ہیں. بچے جب ماں ڈالتی جائے تو وہ کھایا ہوا بھی نکلتا ہے. پھر ماں کیا کہتی، ہائے یہ آخری چمچ میں نے اس کو نہ کھلائی ہوتی. کیوں؟ یہ اوور تھی، اس کا پیٹ بھر گیا، بس اس کو ٹائم دے جائیں، کھیلے کودے، وہ خود ہی آ کے کھا لے گا. تو تبلیغ کے اندر بھی یہ بہت ہی اچھا یعنی ایک نقطہ ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی، آہستہ آہستہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اگر علم نہ ہو تو لوگوں کو دین سے اور دور کر دیتے ہیں اپنے کم علم سے. بالکل صحیح، یہ حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان. جی چلیے، آپ مائک لے سکتے ہیں پلیز، اور ان کے بعد بھی جو سسٹر ہیں وہ ساتھ ہی لیتی جائیں، ٹائم بیچ میں نہیں بھی. اگر 5 سیکنڈ سے اوپر ہوا تو پھر میں دوبارہ لے لوں گی. ٹھیک ہے، کم از کم سب کی شیئرنگ سے فائدہ ہوتا ہے نا کہ اپنے عمل کے لیے بھی چیزیں ملتی.
میں نے بس ایک بات شیئر کرنی تھی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی. میں ایک کلاس لے رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے رمضان میں دورہ قرآن شروع کروایا، تو اس طرح خواتین سننے کے لیے آتی رہی اور آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی نا، کبھی کچھ آ رہی ہیں کبھی کچھ. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک خاتون بھی سننے کے لیے نہ آئی نا، لیکن انہوں نے اپنا حوصلہ نہ چھوڑا، تو انہوں نے پورے ٹائم کا انتظار کیا جس دوران وہ کلاس شروع کرتی تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ فرشتے تو اس روم میں موجود ہیں نا، اور انہوں نے خالی کمرے کو ہی کہ جو روز نا پڑھاتی تھی وہی انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا نا. تو وہ بتاتی ہیں کہ الحمدللہ اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنا کام کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کا قدردان ہے. تو جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم.
السلام علیکم. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا اور وہ اپنی بیوی کے بہکانے میں بہت زیادہ آتا ہے، جبکہ میں بہت ہی سلیکن طبیعت کی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ گھر کا ماحول اچھا رہے. اور تو اس سلسلے میں مجھے یہ بات بھی پوچھنی تھی آپ سے کہ 3 دن سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ بات چیت نہ چھوڑو، لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ گناہ کی بات ہے کہ انسان مسلمان 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے. तो दूसरी बात ये कि अगर मैं कभी हदीस या कुरान सुनाना चाहूँ तो पहले ये पूछ लेते हैं, अगर कभी बातचीत कर भी लेते हैं तो ये पूछते हैं माँ बाप पर तो नहीं है ये हदीस या कुरान की कोई बात, माँ बाप पर तो नहीं है, वो अगर है तो हमें नहीं सुना है। तो मतलब वो बहुत, इस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक ही बेटा है और मैंने मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जब मेरा बेटा 3 साल।
जी उस्ताद, इस सवाल का जवाब दे दिया, उन्होंने पहले भी ये सवाल किया था। आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है? जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।
जी नेक्स्ट, आप हाथ तलत है मेरा ख्याल है, आप भी, आप माइक ले लीजिए, मैं फिर दोनों की बात इकट्ठी जवाब दूंगी।
बेसिकली मैं जो है, जब से मैं इस मुल्क में आई हूँ शादी के फौरन बाद, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो में आए हुए 30 साल हो गए हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आई हैव सीन अ बिग डिफरेंस, पीपल आर कमिंग अ लॉन्ग वे। हावेवर फिर भी आपके अतराफ में हमेशा, या कोई नेबर्स में या रिश्तेदार में या दोस्तों में, खासतौर पर दोस्तों में जिनके साथ आपका साथ जो है 25 साल पुराना हो, अब भी ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते पर आना नहीं चाहते, और वो समझते हैं कि हम अगर मालूम कर लेंगे दीन की बातें तो फिर हमें अमल भी करना पड़ेगा। और मैं अपने, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके हिसाब से, मैं इनडायरेक्टली आई ट्राई माई बेस्ट कि उन लोगों को मैं किसी न किसी तरह से मैसेज दूँ, कुछ करूँ, और ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो मैं चाहूँगी कि अस्ताजा अगर इस मामले में हमारी थोड़ी और असिस्टेंस करें, कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी फिक्र नहीं है, जो लोग जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं हैं उन्हें किस तरह इस तरीके पर, इस रास्ते पर अट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि जो मुझे हमेशा परेशानी होती है स्नोबॉल इफेक्ट की, कि अगर हमने उन लोगों को नहीं संभाला तो वो हमें जो है कश्ती में पानी अंदर आ जाएगा और हम भी डूब सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बस मुझे यही कहना था कि प्लीज़ सिस्टर्स, मेरी सिस्टर का बेटा अचानक बहुत सिक हो गया, तो उसके लिए बराए मेहरबानी आप लोग ज़रूर दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। वो 13-14 साल का बच्चा है, तो ज़रूर दुआ करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। अब देखिए कि जितनी भी बातें सामने आती हैं, तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ही की रहमत होनी चाहिए और सारी बातें ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। यानी मैं किसी एक के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए, सारी जितनी भी बातें अभी तक हुई उस सब का एक मजमूई तासुर देना चाहूँगी जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है। और वो क्या है कि कोई एक दिन में रिएक्शनरी नहीं होता। हो सकता है कि अगर किसी के बात में है, ठीक है, एक तो बात है कि अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको दे, आफियत में रखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी तो कसूर हो सकता है ना। मसलन बहुत सारी चीज़ें हमने उनको वो नॉलेज दिया ही नहीं जिसने माँ बाप की केयर देनी थी। हम उनके ABCD के लिए तो इतने कॉन्शियस रहे, लेकिन रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसने ये इल्म देना था, जिस चीज़ से ये पता चलना था, वो तो हमने उनको बहुत कम दी। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी बचपन में? क्या हमने उनको स्कूल के लिए जिस तरह उठाया, क्या उसी तरह हमने उनको दीन के लिए भी उठाया? क्या अगर हमने उनके एक दिन के 8 से 10 घंटे दुनिया के लिए लगाए तो क्या हमने दीन के लिए भी लगाए? क्या फजर के लिए उठाने के लिए वही एटीट्यूड होता था जो हमारा स्कूल के लिए यानी उठाने के लिए होता है? ये हर माँ बाप का मसला है, किसी एक का मामला नहीं है। फिर दूसरी बात जो मैंने इस जुमले से महसूस की कि वो इतना ऑफेंड है कि बात नहीं सुनता, और ये कहता है अगर कि क्या इसमें कोई माँ बाप की हदीस तो नहीं, इसमें क्या बात है?
शायद उसने हमेशा सुनी ही ऐसी हदीसें जिसमें माँ की बातें, यानी ये बहुत सारी माँओं का मामला है कि वो बच्चों को हमेशा ऐसी हदीसें बताती हैं, देखो अल्लाह ने ये कहा माँ बाप के लिए, माँ के कदमों में जन्नत है। और मैं खुद फील करती हूँ कि कुछ लोग यानी बुक्स भी लेते हैं, सीडीज लेते हैं, टेप, तो वो हमेशा यही कह के लेते हैं कि जी ये बताएं जिसमें माँ बाप के हकूक हैं। लोग मेरे से कभी मशवरा करते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ देखें ये टेप ले जाएं, ये बहुत अच्छी है। तो वो कहती हैं क्यों, क्या इसमें? मैंने कहा इसमें बहुत दिल नरम करने की बातें, आखरत, नहीं, उसको माँ के हकूक की दें। मैं क्या कहूँ आगे, नहीं देनी चाहिए ऐसी, बिल्कुल नहीं। आप दिल तो खोले, दिल सख्त है, आप माँ की छोड़े खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की जात के बारे में उनको कुछ देंगे वो भी नहीं सुनेगा। दिल सोजी, दिल नरम करें। आपको कहीं भी घुसना है ना तो आपको इर्द गिर्द जगह बनानी पड़ेगी। जब हम दिल में जगह बनाए बगैर घुसने की कोशिश करते हैं ना तो हम खुद टूट जाते हैं। यानी किसी किसान को देखें जब बीज डालता है तो कैसे डालता है, मट्टी नरम करता है ना, ज्यादा टाइम मुश्किल वो होता है गोडी करना जिसको बोलते हैं, कितने दिन जमीन को उलटता पुलटता है। क्यों? जमीन नरम भी होती है और दूसरा क्या होता है कि बाहर की ऑक्सीजन जमीन के अंदर मिक्स होती है तो उसके अंदर फर्टिलिटी आती है। जब जमीन इस काबिल हो जाती है फिर बस हाथ से बीज, मैंने खुद डालते देखा है लोगों को, बस पकड़ के बीज यूं यूं डाल डाल के चलते और दैट्स इट। लेकिन उससे पहले का काम फजरों पे उठना और जाके जमीन को खोदना, ये मुश्किल काम है। औलादों के दिल क्यों सख्त हैं? क्योंकि उसके अंदर अभी सख्ती आई हुई है। नरम करना, ये किसी एक का नहीं, सबका मसला है। यानी मैं देखती हूँ कि बच्चे शाउट करते हैं मम्मी, इस तरह मैं तो किसी बच्चे का किसी माँ के सामने इस तरह कहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती जब वो माँ को चीख के बात करते हैं। मेरा दिल करता है कि ये माँ जो उसके बावजूद उसके लाड कर रही है, मैं उस बच्चे को छोड़ूँ, पहले माँ को समझाऊँ कि तुम क्या इसको कर रही हो। बच्चों के साथ मामला करना, तरबियत करना, उनको खास तौर पे दीन की तरफ लाना, ये बहुत हिकमत का तकाजा रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी डायरेक्ट तबलीग नहीं की थी। अब मिसाल है कोई भी ऐसा मामला है कि जिसमें बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, पहली चीज क्या की जाए, यानी अब हम इसके प्रैक्टिकल इशू पे आते हैं, पहली चीज क्या है कि दुआ करें। माँ की दुआ लगती है, बाप की भी लगती है, और जितने दिल से आप अपने लिए खुद दुआ करेंगे कोई नहीं कर सकता। कोई करेगा भी तो वो रस्मी तौर पे आमीन कह देगा, लेकिन जो दुआ आप खुद करते हैं ना, तो बजाय इसके कि दूसरों को कहें वो दुआ हम अपने दिल से करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। दूसरी चीज यानी बिगड़े हुए को हिदायत पे लाने के लिए, एक तो ये चीज हो गई, फिर दूसरी चीज ये है कि हम वो सबब ढूंढे। सबब क्या है कि जिसकी वजह से ये बिगाड़ आया? और अमूमन सबब जो होता है वो, जैसे बाज दफा तो ये होता है कि दीन की बिल्कुल समझ ना देना, लेकिन बाज लोग मेरी इस बात को सुनते ही फौरन कहेंगे नहीं हमने तो शुरू से उनको बहुत दीन सिखाया, इधर लेके फिरे उधर लेके फिरे, तो फिर सम टाइम सही जगह नहीं सीखा, यानी हिकमत से नहीं बताया, या ओवरडोज भी कभी कभी होते हैं। कुछ लोग जो रिलीजियस बैकग्राउंड रखते हैं ना उनके साथ मामला क्या होता है कि वो फिर ओवरडोज भी होते हैं। और मैंने देखा है एक ही मौजू पे रटी रटाई बातें, एक ही हदीस जो हर दर्स में भी होती है, हर मौके पर होती है, हर किताब में, अब वही बयान करते हैं। नहीं, दिल ने मान लिया तो आपकी आम बात भी फायदेमंद होगी, और दिल ना माने तो आप देखिए अच्छे अच्छे खाने लोग थूक देते हैं, नहीं खाना चाहते। क्यों? क्यों उनका मूड नहीं बना हुआ। तो इसके लिए यह है कि कंपनी बदली जाए, उन बच्चों से मोहब्बत का इजहार किया जाए इस तरीके से कि उनको ये फील हो कि वाकई मैं इनके लिए अहम हूँ। बस दफा क्या होता है कि माएँ ये रोती हैं, यानी माएँ या बाप कभी भी कहीं रोते हैं, देखो तुम्हारे बगैर मेरा कौन है, फिर तुम ऐसे करोगे, ये उसका दिल क्या होता है कि इन बातों से उसका दिल नरम होगा, लेकिन समटाइम रिएक्शन भी हो जाता है। जैसे मैंने आपको, नहीं चले आपको भी सुनाती हूँ एक, यानी क्लिप एक, जो अभी हम यहाँ सुबह क्लास में बात कर रहे थे कि एक क्लिप मैंने देखा कि इब्लीस किस तरीके से मतलब बच्चों को या दूसरों को ट्रैप करता है, बात नहीं सुनने देता। तो एक लड़का यंग टीनेजर उन्होंने दिखाया हुआ था कि जिसके अंदर वो टीवी पे शायद कुछ देख रहा है, कोई मैच है या कोई ड्रामा है, और बहुत इन्वॉल्व है ना, साथ जंग खा रहा है और खा रहा है, और माँ जो है वो किचन से कई दफा आवाज दे रही है, फिर माँ आके सर के पास खड़ी होती है और माँ क्या कहती है कि मुझे बाहर जाना है, कहीं जाने की बात माँ कर रही है डॉक्टर पे शायद, तो बच्चा मतलब माँ की बात नहीं सुनता, यानी इवन वो खड़ी है और उसका अहमियत भी नहीं देता। इतने में उस बच्चे के पास सेलफोन है, लड़के पे के पास सेलफोन है, और उस पे फोन की बेल होती है, तो वो फोन उठाता है, तो फोन पे उसका दोस्त है,
जो घर के बाहर खड़ा है अब आके, और वो उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाहर हूँ, चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं ना कुछ बाहर घूमने के लिए। तो वो उसे इतने प्यार से बात करता है, और एक मिनट में फौरन टेलीविजन बंद किया और सेलफोन लिया और बाहर भाग गया। तो वो माँ अपने सीने पे हाथ रख के एक आह भरती है कि देखो मैं कब से तुम्हारे पास थी कि मुझे ले जाओ, तुम नहीं लेके गए, तब दोस्त आया तो तुम ले गए। अब ये क्लिप है, अरेबिक क्लिप था, तो मैंने उसको शेयर किया, आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे किसी मौके पे। तो अब ये चीज़ से मैंने क्या सीखा, देखे माँ पास खड़ी थी, माँ की जरूरत भी थी, माँ बात जो कह रही थी वो भी ठीक थी, लेकिन माँ की बात अंदर नहीं गई, दोस्त की क्यों गई? दोस्त के साथ दिल जुड़ा हुआ है, दिल के साथ मामला जो है वो असल मामले दिल के होते हैं। आज 80% औलादों का यही हाल है कि नहीं? वो एक बच्चे हों, वो दो हों, वो चार हों, वो 10 हों, माँ बाप की बात नहीं मानते दूसरों की। अट्रैक्शंस, बाहर अट्रैक्शन बहुत है, दूसरी तरफ ग्लैमर है, फिर दूसरे घर में आते हैं तो पाबंदी है। बास बच्चे मैंने देखा सिर्फ इस वजह से माँ से घर छोड़ के अलग चले जाते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है घर में, आप हम कोई चीज लाते हैं तो आप खुश नहीं होते, आप हमारी चीज पे केयर नहीं करते। मैंने देखे वो माएं जो बच्चों के सामने भीख मांगने वाले अंदाज में भी एक खिदमतगार खादिमा की तरह खड़ी रहती है, उनके बच्चे भी उनको छोड़ जाते हैं। क्यों? आपकी कम्युनिकेशन बोर्ड नहीं बना। असल चीज क्या है कि आपका लेवल एक आ जाए। आप देखिए कि कम्युनिकेशन बोर्ड कैसे बनता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं जो बात करूं आपको वो समझ ही ना आए, या मैं इतनी मुश्किल बात कर दूं कि वो लफ्ज आपके जहन में ही ना आ सके, या मैं इतनी छोटी बात कर दूं जो बिल्कुल आपको समझ यानी आपके लेवल से कम हो, आप नहीं सुनेंगे ना, या मैं कोई ऐसी जुबान बोलूं जो आपकी नहीं है। ठीक है, इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बचपन से हम लोगों से हो जाती हैं लाशौरी तौर पे, कि माँ बाप और बच्चों में बोन बन जाता है। मैंने एक चीज कल फील की, मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने पाकिस्तानी कल्चर में तो बहुत जगह फील की थी, कि माएं उर्दू बोलती हैं, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, माँ बच्चे की इंग्लिश समझती है, बच्चा माँ की उर्दू समझता है, ऐसे ही है ना। कल अगर मामला उलट जाए कि बच्चे को कह जाए कि इंग्लिश लिखो उर्दू लिखो, नहीं लिख सकती, माँ को कह दे इंग्लिश लिखो, माँ नहीं लिख सकती, यानी इस वक्त हमारी जनरेशन जो यहाँ पलती हैं वो 70-80% इस तरह का एटीट्यूड है कि माँ बाप इंग्लिश समझने लग गए हैं बच्चों के साथ बोल बोल के, लेकिन लिख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, और पेरेंट्स इस तरह। कल मैंने एक अरब बच्ची और उसकी माँ को देखा, शायद कहाँ देखा अभी इस वक्त मेरे जहन में, शायद इधर ही कोई माँ आई, माँ अरब थी, बच्ची इंग्लिश थी, यानी बच्ची भी माँ बच्ची थी, और बिल्कुल वही चीज जो मैंने अपनी लैंग्वेज में देखा मैंने कल उन माँ बच्चियों में देखा, कि माँ बच्ची के साथ अरबिक बोल रही थी और बच्ची उसके जवाब में इंग्लिश बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि बात तो एक ही है, जो हम कर रहे हैं वही ये कर रहे हैं। एक बात जहन में रखिएगा, अगर बच्चे माँ की जुबान नहीं समझते ना, हमने ये जो जुबान से रिश्ते काटे हैं ना कि हमारे बच्चे उर्दू समझते नहीं और वो बोलते नहीं, और माँ बाप बड़े प्यार से कहते हैं सो के, शुरू शुरू में जब हम आते हैं ना इधर तो हमें हर चीज़ ही यहाँ की बड़ी अच्छी लगती है, फिर हम इस पे बड़े खुश हैं कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलने लग गया, वो देखो पाकिस्तान में भी बताते हैं अब तो बड़ी अंग्रेजी बोलता है। अच्छा चले, एक और तजुर्बा परसों मेरे साथ हुआ, यानी इससे एक रात पहले मैं मस्जिद नमाज के लिए गई, फिर वहां पीछे पार्किंग लॉट आप लोगों को पता है इधर ना, यानी प्लेइंग ग्राउंड बना है। एनीवे मेरी वहां मुलाकात हुई, और वो क्या था कि माँ जो है वो बच्ची बच्ची थी 6-7 साल की, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई बच्ची स्कूल जाती है क्या? कहती नहीं, मैंने इसको अभी तक स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा अच्छा गुड, आप घर में पढ़ाती होंगी? कहती हाँ बस थोड़ी कोशिश करती हूँ एंड दिस एंड दैट। उसके बाद बच्ची आ गई। अच्छा बच्ची आई तो बिल्कुल उसका वही एटीट्यूड जैसे यहाँ के बच्चों के बोलने का होता है, इंग्लिश बोल रही थी। इंग्लिश बोलना बुरी बात नहीं है वल्लाही, मेरी बात से ये ना समझेगा, लेकिन टोन, बात माँ से चीख के बात करना, टोन, मम्मी झूले दो ये करो, फर फर इंग्लिश बोल रही थी, माँ उर्दू बोल रही बच्ची नहीं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा कि अभी ये स्कूल तो गई नहीं तो इंग्लिश तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बोलने लग गई है। कहती हाँ बड़ी जहीन है, इसने इंग्लिश सीख ली। वो कैसे? तो कहती टीवी देख देख के सीख ली है। कहती हुई देखें इसको मुझे एक दिन ABC नहीं सिखानी पड़ी एंड सो ऑन, लंबी बात हो गई। यानी उसने उसकी बताई मकसद क्या है। अब देखिए कि एक बच्चा कल्चर में नहीं। मैंने कहा आप क्या करती हैं, क्या सिखाती हैं? कहती बस थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ इसको सिखाने की, कुछ इस तरह। यानी इस्लामिकली बच्ची कहीं नहीं अभी जा रही, 6-7 साल की बच्ची, यानी अच्छी बच्ची लग रही थी देखने में, लेकिन इतना कल्चरल गैप। और बच्ची माँ को देखती है, बात करती है तो घूरने के अंदाज में, चीखती है चिल्लाती है, उनको बात नहीं मानना। मैं जब बच्चों को चीखते और चिल्लाते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि इन बच्चों को नहीं, मैं इनके माँ बाप को बिठाऊं और मैंने पूछूं कि आप लोगों को होश नहीं आ रहा, आप क्या आप क्यों जवाब देते हैं एक बच्चे का? हम बचपन से जिस माहौल में पलते हैं, जिस इर्द गिर्द अपने देखते हैं, ये वाकई हमारे लिए एक लम्हे फिक्री है। यानी इन्होंने लिखा है कि सेम केसेस विद पंजाबी एंड उर्दू। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे आपके साथ दिल धड़के, तो आपकी जुबान उनकी जुबान, आपका पहन ओढ़ना बच्चे का। मैं देखती हूँ कि माँ ढकी छुपी अच्छी लूज कपड़ों में, ढीले ढाले कपड़ों में, अबाया और स्कार्फ में भी है, और साथ यंग बच्ची है, और वो इतना टाइट ड्रेस पहनी है कि सीधी खड़ी नहीं हो सकती, अकड़ी हुई लग रही है। व्हाट डज इट मीन? ये माँ का अगला अकाउंट है, ये बच्चा आपका एक अकाउंट है, हर बच्चा आपका एक नया अकाउंट खोला है। आप अपना अकाउंट तो सेव कर लें, वो तो माशाल्लाह सेफ है हर लिहाज से, और बच्चों के मामले से डिफरेंट होगा तो क्या होगा? तो लिहाजा देखिए कि गलती का है। इन्होंने लिखा है कि टीवी टीच स्क्रीमिंग्स, सच है, स्क्रीम करते हैं बच्चे यहाँ के, शाउट। और आप किस पे स्क्रीम करेंगे? आपके अंदर क्या ख्याल है? आई एम बेटर, मैं बेहतर हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ ये ज्यादा अच्छी है, और जो मेरे सामने है ये स्टूपिड है। लिटरली लोग बच्चों को, यानी जो पेरेंट्स को स्टूपिड समझते हैं, बाज लोग तो जुबान से भी कह देते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें जो हम सुनते हैं। तो लिहाजा गैप नहीं हो, आपस में हो। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ रहते हुए, मेरा ट्रेवलिंग में अक्सर वो गुजरता है, डिफरेंट जगहों पे देखा ऐसे ऐसे बच्चे हैं। यानी मैं आपको बताती हूँ, किसी शहर में मैं गई तो डॉक्टर ने, फैमिली भी और बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी, तो मैंने कहा, बच्ची उनकी यंग थी तो कहने लगी, मैंने उर्दू बोलना चाहिए तो कहने लगी ये उर्दू नहीं समझती। मैंने कहा क्यों? कहती या ये इंग्लिश समझती है या पंजाबी समझती है, यकीन करें मैंने इतना एंजॉय किया। क्यों? कहती हम घर में खबरदार कोई और कोई जबान, हम घर में इसके साथ पंजाबी बोलते हैं और बाहर इंग्लिश। और अब माशाल्लाह वो बच्ची कहीं बाहर यूनिवर्सिटी पढ़ी, अरबी भी पढ़ती, यानी अब अरेबिक, इंग्लिश और पंजाबी उसको आती, उर्दू नहीं आती। बेसिस रूट्स रही ना कायम। यहाँ मैंने ऐसे माँ बाप भी माशाल्लाह देखे हैं कि अगर आप उनके बच्चों से इंग्लिश बोलने लगे तो वो कहते हैं कि नहीं, आप प्लीज इनसे उर्दू बोलें, क्योंकि ये ज्यादा, हमने इनको शुरू से इस चीज की बात डाली है। तो देखें, बात ना उर्दू की है ना इंग्लिश की है, ना वल्ला ही इंग्लिश बोलने में कोई बुराई है, ना इंग्लिश, उर्दू बड़ी अच्छी जुबान है या इंग्लिश अच्छी। यहाँ जो थीम है उसको जहन पे रखिए कि रूट सीखो, माँ बाप और बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल एक होगा, खाएं एक। मैं कहाँ कहाँ बात करूं, अभी एक और चीज मिसाल याद आ गई कि माँ और बाप खाते हैं पाकिस्तानी खाने देसी, और बच्चे खाते हैं बैठ के बर्गर। यानी एक ऐसी माँ से मेरी मुलाकात हुई, और हमेशा ही ऐसे मौके सामने आते रहते हैं, तो कहती मैं तो जो खाना पकाती हूँ वो बचता ही है, क्यों? कि हम, मैं खाती हूँ या मियाँ खाते हैं, मियाँ का मूड होगा खाएंगे। तो मैं कहा बच्चे क्या खाते हैं, माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो कहेंगी वो कोई बर्गर खाता है, कोई फुलांग खाता है, कोई कोई खाता है। अब जरा सोचें, आप एक लेवल पे आइए, एक घर में आप दो, एक मियाँ बीवी हैं, दो चार बच्चे, चार तीन बच्चे लगा लें, दो मियाँ बीवी हो गए, पांच लोग हैं, चले दो ही बच्चे लगा लें, आपको दो अच्छे लगते हैं तो दो लगा लेते हैं, हैं? अच्छा जी, अब देखिए दो बच्चे हैं, चार फ्रीक हैं ना उस घर में, एक टेबल पे खाने के लिए बैठे, खाना एक नहीं खा रहे, ठीक है, बातचीत करने बैठते हैं तो बोलने का अंदाज फर्क है, शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कपड़े खरीदने का अंदाज फर्क है, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं उनकी ग्रोसरी के स्टाइल और है, आपके और है। आप कैसे कह सकते हैं कि जवान होते ही, 17-18 साल के बच्चे होते ही ये माँ बाप के साथ दिली मोहब्बत करेंगे? इंसान की आदतें, उसका खाना, उसका पीना, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। आप मिर्ची वाला खाना सब बैठ के खाते थे, इंजॉय करते हैं ना कि बड़ा चटपटा खाना है, और अगर आपको लगे कि मैं खा रही हूँ दूसरे नहीं खा रहे, तो आपको खुद भी नहीं अच्छा लगता कि मैं अकेली क्यों खाऊं, इंजॉय करते हैं। आप चाय अकेले पीते हैं, उस चाय में और मजा होता है, आप सबके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आपको मजा आता है। फर्क शुरू से, बैक टू दी बेसिक्स, पीछे जाइए, पहले दिन से उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जोड़िए, हर अंदाज में साथ रखिए। खाने की टेबल पे चार सीरियल के डब्बे कभी समझ नहीं आती, क्यों? ये छोटू का है, ये मोटू का है, ये फुलाने का है, ये ढमकाने का है। अब आप बताइए कि आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो अपने नाश्तों पे डाल दिया, नतीजा क्या निकलेगा वो आप सब देख लीजिए। अब ब्रेक का टाइम मैं ले रही हूँ आप लोगों का, उम्मीद है कि आज के सारे डिस्कशन से कुछ ना कुछ फायदा आपको हुआ होगा।
انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ آپ کی 11:45 پہ تجوید کی گرامر کی کلاس ہے, یہ بریک ہے, جو لوگ جائیں تو خوشی سے جائیں, بریک منائیے, لیکن جو کمنٹس لکھے ہوئے میں ان کو پڑھنا پسند کروں گی تاکہ کسی کی لکھی ہوئی بات ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی فائدہ دے. By learning Quran and life of our beloved Prophet ﷺ, we are discovering the hidden pearls that we did not know before. Jazakallah khair for your help. Alhamdulillah. یہی مقصد بھی ہے نا اس کتاب کو پڑھنے کا, ورنہ اردو تو آپ سب کو بھی پڑھنی آتی ہے, تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں, ادروائز آپ کی کوئی لینگویج کی کلاس نہیں ہے, تو مقصد بھی یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں لا سکیں. اچھا جی, my attention with my little ones was that I have to teach him Urdu, English we have. بالکل دیکھیے, میں آپ کو یہاں ایک چیز کی بات کہوں, اگر آپ لوگ بھی اس پہ غور کریں, یہاں ہمارے پاس پیرنٹس نے, کچھ لوگوں نے ایسی بات بھی کی تھی, اور میں نے سیریسلی اس پہ سوچا تھا کہ ہم بچوں کو اردو بھی سکھائیں. کتنے لوگ اس پہ اگری کرتے ہیں؟ یعنی ہم اصل میں اس وقت سمر کورس ڈیزائن کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, تو کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایز اے سبجیکٹ ان کو اردو سکھانی ہے, کوئی اور بول ہی کچھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, الحمد للہ, تو یہ بہت ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اردو سکھانے کے لیے والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں, زبان سکھائیے, اس سے قرآن بھی آتا ہے. میں نہیں کہتی کہ اردو زبان بولنے سے بندے نیک ہو جاتے ہیں لوگ, لیکن کیا ہے کہ قرآن عربی جو ہے, اردو وہ بہت کلوز زبانیں ہیں, بہت فرق پڑتا ہے. میں دونوں کلاسز لیتی ہوں اور میں فیل کرتی ہوں کہ اردو سیکھنے والے زیادہ گریب کرتے ہیں. I don't have kids but I want them to learn Urdu. ٹھیک ہے, اللہ کرے جب آپ کے بچے ہوں تب ان کو اردو سکھائیں. I have done Urdu as a heritage language here in Toronto. الحمد للہ, دیکھیے یہ احساس کمتری کی علامت ہے اگر ہم اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے نہیں بولتے. میں نے ماں باپ کو لٹرلی بچے کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے کہ تم نے پنجابی کیوں بولی. یعنی اس نے چوکی دار, ایک فیملی ہے ہمارے خاندان میں, کہ وہ کانشیس ہے اس بات پہ کہ اردو بولنے سے انسان مہذب ہوتا ہے اور وہ زیادہ پڑھا لکھا لگتا ہے. اچھا, بچہ پیدا ہوا تو وہ گھروں میں مالی بابا اور وہ چوکی دار تو ہوتے ہی ہیں, وہ ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں, تو وہ بچہ جا کے باہر ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. اس وقت اس بچے کو, ماشاءاللہ ینگ بچہ ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, جو پنجابی اس بچے کو آتی ہے وہ گھر والوں کو بھی نہیں آتی. ریشنری گھر والے بولنے نہیں دیتے تھے, اور وہ وہاں جا کے تو اسے بولتا تھا, لٹرلی وہ مارتے تھے کہ خبردار اگر تم نے بابا جی کے پاس بیٹھنا, انہوں نے اس کا روک دیا کہ یہ بابا جی اس کو پنجابی سکھاتے ہیں. تو بہرحال بات تو یہی ہے کہ جو بھی ہم سیکھیں تو اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں. جن کے اوپر کمنٹس تھے وہ اگر چاہیں تو دوبارہ پیسٹ کر دیں. مائی کڈس وین دے اسپیک اردو دے ساؤنڈ سو کیوٹ بٹ ماشاء اللہ دے ڈو نو ہاؤ ٹو اسپیک. الحمد للہ, گڈ, یہی تو بہت اچھی بات ہے. دونوں زبانیں آنی چاہیے, اور ہماری تو زبانوں کا حال کیا کہ چون چون کا مربع بن گئی. اردو میں بھی 10 لفظ انگلش کے اور دوسری لینگویجز کے نہ آئیں تو بات ہی نہیں بنتی. My son already know Urdu, now he is learning Punjabi. MashaAllah, کوئی بری بات نہیں ہے. Same, I have learned lots of Pashto from servants. صحیح, ہاں, موسٹلی جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ماشاء اللہ کافی ان کی, مجھے تو اتنی پیاری لگتی ہے زبان, یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے یہ زبانیں بھی کوئی سکھائے. سندھی زبان نہیں, یعنی بہت زیادہ آتی, یا دوسری بھی تو سیکھنی چاہیے. آئی ہیو نوٹس دیٹ میکسیکنز آلویز اسپیک ان دیئر اون لینگویج ود ایچ ادر. صحیح, بالکل صحیح. یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ صرف اپنی ہی زبان بولتے ہیں. مائی کڈ اسپیک انگلش ٹو می اینڈ آئی اسپیک اردو ٹو دیم بٹ وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر, دے آر ٹینیجرز, ہاؤ کین وی فکس دیٹ. چلیے واپس, آپ ان سے انگلش سیکھیں, وہ آپ سے اردو سیکھیں. یہی تو ہوتا ہے. مجھے بھی یہی مسئلہ ہوا تھا جب میں یہاں آئی تھی, تو جی, تو اب حال کیا کہ ان کو زیادہ اچھی اردو آتی ہیں میری انگلش سے, ان کی اردو اچھی ہے, تو وہ کہتے تم زیادہ اچھی ٹیچر ہو اس لیے تم نے مجھے اچھی سکھا دی. تو میں کہتی نہیں, آپ نے مجھے نہیں سکھائی. تو بہرحال جو بھی سیکھیں گے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے, دونوں ہی لینگویجز کا فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے, پیچھے نہ ڈالے. My kids know Sindhi now, they are learning Urdu and Arabic. MashaAllah. دیکھیے کہ تبلیغ کے لیے, مبلغ کے لیے لینگویج بہت اہم چیز ہے. آپ انگلش سیکھیں اس لیے کہ اللہ تیرے دین کو پھیلانا ہے, آپ عربی سیکھیں اللہ تیرے دین کو پھیلانا ہے, آپ پنجابی سیکھیں, آپ سندھی سیکھیں, آپ کا یہ سب سیکھنا عبادت ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. Once when my mother-in-law came to visit us, she would spend more time with my daughter as she is more fluent in Urdu. My son started crying and my mother-in-law told him, you don't make an effort to talk and your sister does, so I have to spend more time. Since then, he started making more efforts and do both dadi and nani. He talk nicely in Urdu. MashaAllah. Achha, ye aapne bohat achha nukta yahan uthaya ke jab gharon mein buzurg hote the na, ya aaj bhi jo families mein buzurg naniyan dadiyan saath rehti hain, to wahan bachchon ko jaldi Urdu aati hai. Apni zuban jo hai wo waqai aani lagti hain, aati hain in cheezon ke liye. To buzurgon ke saath ye bhi, kyunki wo to English nahi jante na. जी मुझे हाथ दिख नहीं रहा किसी का, अगर रेस हैंड है सारे नीचे गिराएं और दोबारा हाथ उठाइए प्लीज. माय सन नोज उर्दू वेल बट व्हेन आई टॉक विद हिम ही रिप्लाइड विद मी इन इंग्लिश. ठीक है. माय मदर टंग इज नॉट उर्दू बट नाउडेज आई स्पीक उर्दू वर्ड विद माय हस्बैंड. ही ऑलवेज सेज आई हैव टू गो गेट उर्दू डिक्शनरी फॉर. आपने जो बात कही मैं आपको इससे एक बात सुनाती हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह जिनके हैंड रेज हैं मैं उनको मौका दूंगी. कि यहाँ मैं किसी ऐसी कन्वर्टर से मिली, हमारे यानी किसी दावत में थी वो भी, और मैं क्लास एक वक्त था वो मेरी क्लास में भी आती थी, शायद आप लोगों में से इधर जानते हो. वाइट हैं और कन्वर्टर हैं, शादीशुदा हैं, 3-4 बच्चे हैं. इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं कि शायद हमारे यहाँ रहने वाले बच्चे ना बोलते हों. फिर एक दावत में काफ़ी टाइम मुझे उनके साथ स्पेंड करने का मौका मिला, तो उस वक़्त फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब शादी हुई उनकी तो कहती कि मेरे मियाँ ने और मेरी सास ने मेरी हेल्प की. सास भी वहीं थी और वो कहती कि इसने इतनी जल्दी पिक की है कि आप सोच सकते हैं कि एक आपकी मेरी क्लास में जब शुरू में आई, मैंने जब यहाँ पहली दफ़ा यहाँ शुरू की थी ना, उस हॉल में थे हम लोग, तब वो आती थी. तो मैंने जब पहली दफ़ा उनको देखा तो मैं बड़ी अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करूँ कि मेरी क्लास उर्दू की और एक फॉरनर बैठी हुई और पता नहीं ये क्यों आई हैं, क्या काम है, और बेचारी और बिल्कुल कूल इन काम, कोई चेहरे पे बेचैनी नहीं कि समझ नहीं आ रहा. तो बाद में जब मुझे पता चला कि इनको समझ आता है तो मैं बड़ी हैरान हुई. लेकिन अब तो वाकई में देखा, और उसी के घर से पहली क्लास शुरू हुई थी न्यू टेरिटरी मस्जिद की. सदफ जो हमने न्यू टेरिटरी में पहला दर्स किया था वो उसके घर किया था, फिर वहाँ डिसाइड हुई वो क्लास और फिर उसने कहा मेरा घर हाजिर है, तो बाद में फिर मस्जिद में मूव हुई कि चले सबके लिए. तो असल बात यह कि जितना भी सीखना चाहेंगे फ़ायदा होगा. तो आप लोग बारी बारी माइक लीजिए और आप जो बात फ़ायदे की हो वो कर सकते हैं.
अस्सलाम वालेकुम. मैंने अभी आपसे सवाल किया था उस सिलसिले में, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं अपने बेटे का दिल नरम कैसे करूं, जबकि मतलब मैंने 20 साल जो मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया, उसके माशाल्लाह से अच्छी जॉब भी है और वो नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है बाकायदगी के साथ रोजाना, और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, और मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है और कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, मतलब अभी तक ये कहता था. लेकिन बस वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऐसा हो गया है कि अब बिल्कुल भूल गया है अपनी माँ को. और तो उस सिलसिले में मैं नरम कैसे करूँ, उसको अपनी तरफ किस तरह मतलब लेकर आऊँ, और क्या करना चाहिए मुझे?
सॉरी, उनका सवाल ये है कि मैं अपने बेटे का वो अपने बेटे का दिल नरम किस तरह करें. उसका चाहे अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. जज़ाकअल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.
जी जज़ाकअल्लाह खैर. जी इसके लिए ये है कि पहली चीज़ दिल नरम करने की, तो वो है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे का दिल नरम हो जाए. फिर दूसरी चीज़ यही है कि आप उससे जितनी भी मोहब्बत और भी कर सके बेलॉस मोहब्बत करें. उनको ये ना फील हो कि आपको उनसे कोई मतलब है. समहाउ क्या होता है कि हम बच्चों के साथ ऐसा मामला करने लगते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा बनोगे और इस तरह की बात. ये ना करें, बिल्कुल दिल में ये रखने दें ख्याल कि बिल्कुल मुझे इससे कुछ नहीं लेना. ठीक है, बिल्कुल बेलॉस हो के उनसे आप ताल्लुक रखें, वन साइडेड जिसको लव कहते हैं वो दें. और फिर दूसरी बात है कि दिल को नरम करने के लिए एक साइड वाइज ऐसे ताल्लुक हो सकते हैं कि आप खुद कुरान सीख रही हैं तो जो बातें अब यहाँ सीखती हैं तो उसको नहीं बल्कि दूसरों के नाते से सुनाने के नाते से आप उनको बताएं, और फिर उसके बाद ये है कि आप मौका मिले तो किसी तरह उसको उम्रे पे ले जाएं। जी अभी एक मिनट है बस, इंशाल्लाह हम छोड़ रहे हैं। तो इसमें यही है कि आप उम्रे पे ले जाएं या हज पे ले जाएं, थोड़ी कम्युनिटी चेंज करें। मुझे लगता है कि माँ बाप की बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें भी गलत माहौल की वजह से बदल जाती हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के साथ भी यही मामला हुआ था, तो उसके लिए भी यही है कि आप लोग कोशिश करें कि माहौल बदलाएं, अच्छी कम्युनिटी दें। अगर आपको लगता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ही ऐसे लोग आ चुके हैं, माशाल्लाह आपने बताया कि नमाज भी पढ़ता है और कुरान पढ़ता है, जिसका अंदर दिल बहुत अच्छा है उसका, अगर आप थोड़ा सा उसका माहौल चेंज करें या अपने सोसाइटी में कोई एक ऐसा यंग कोई ऐसे लोगों में देखें जो दीन से क्लोज हैं, कोई ग्रुप्स ऐसे रखते हैं, तो उससे बच्चे को मिलाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही फायदा होगा। तो यहीं पे हम रुकते हैं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह समर कोर्सेज के लिए आप लोग आइडियाज़ अपने दे सकते हैं और बाकी चीज़ें हमारी होंगी। अब तकरीबन क्लास का वक्त हुआ चाहता है, आप लोग अगली क्लास से फ़ायदा उठाइए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जी सिर्फ एक मिनट मैं लूँगी उस्ताद का, कि कल का मैं अभी अनाउंस कर दूँ, बाद में भी करेंगे लेकिन शायद कुछ ना हो। तो कल ये है कि 9 ईस्टर्न टाइमिंग सारे आपको बता रही हूँ, 9 से लेकर 10 का टाइम ऑप्शनल है। सिस्टर मुनीरा के साथ आप लोग तजवीद की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपकी रोल कॉल है, और रोल कॉल के बाद इंशाल्लाह हयात सहाबा के दरख्शां पहलू हम करेंगे, और उसके बाद फिर अकीदे की क्लास होगी। तो टोटल जैसे 12:30 पे आपका एवरीथिंग फिनिश हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।